वहीं मनोज जी उस वक्त सिर झुकाकर एक तरफ बैठे हुए थे। उन्हें भी एक बंदूकधारी ने अपनी बंदूक के निशाने पर लिया हुआ था, लेकिन सम्राट तो मुंह खोलकर राजवीर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरमान का उसकी स्टोरी जानने के लिए बताओ वाला पर देखकर राजवीर हैरानी से भर गया था। फिलहाल राजवीर को थोड़ी देर के लिए चुप होता देखकर सम्राट जल्दी से बोला, गुरुजी गुरुजी, जब आप नैना के होठों को देख रहे थे, वो बेहद खूबसूरत लग रहे थे, तो क्या आपने उन्हें किस किया या नहीं किया? अब सम्राट का ये सवाल सुनकर राजवीर ने उसे गहरी नज़रों से देखा और अगले ही पल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। फिर बोला, इतना भी उतावलापन ठीक नहीं है, बता रहा हूं ना तुम्हें पूरी कहानी। देखो, अरमान ने कोई सवाल नहीं किया, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर मेरी सारी कहानी सुनना चाहता है, और मैं यहाँ अगर आज सब कुछ बता रहा हूँ तो सिर्फ इस अरमान के लिए या फिर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। आखिरकार मेरा सर्वश्रेष्ठ चेला रहा है और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना तो बनता ही है। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, सम्राट ने मुंह बनाकर अरमान की ओर देखा, तभी राजवीर आगे बोलने लगा। उसके बाद मैं भले ही उसके होठों की तरफ देख रहा था, लेकिन मैं तुरंत ही घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों कान पकड़ लिए। ये दृश्य देखकर नैना भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई थी। तभी मैंने अपनी आंखों में लगाई हुई ग्लिसरीन के कारण ढेर सारे आंसू बहाए और नैना से माफ़ी मांगते हुए बोला, आपने मुझे गलत समझ लिया, मैंने आपको कभी गलत नज़रों से देखा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ आपके गले में पड़े उस लॉकेट को देख रहा था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, नैना माथुर का ध्यान तुरंत अपने गले में पड़े उस वाइट लॉकेट पर गया। वो लॉकेट उसे बहुत प्यारा था, मानो उसकी जान ही हो। लेकिन फिर भी नैना बोली, मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी समझ पर पूरा भरोसा है। अगर कोई आदमी किसी औरत को गलत नज़र से देखता है तो औरत को उसका अंदाज़ा हो ही जाता है, उसमें इतनी ताकत होती है। और तुम तो मेरे बिल्कुल पास खड़े होकर मुझे घूर रहे थे, क्या मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम किस नज़र से देख रहे थे? जैसे ही नैना ने एक बार फिर से अपनी बात रखी, राजवीर घुटनों के बल बैठा सिर झुकाकर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे गलत क्यों समझ लिया। मैंने तो आज तक किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, तो भला मैं आपको क्यों देखूंगा? और वैसे भी हो सकता है आप खूबसूरत हों, लेकिन आप इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि राजवीर जिंदल आप पर मर मिटे। मेरी ज़िंदगी में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी जाँच करवा सकती हैं, सब पता चल जाएगा कि मैंने आज तक किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखा। ये कहकर मैं खड़ा हुआ, एक बार उसकी आंखों में देखा और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। मैं जानता था अगर मैं उसके सामने बार बार जाऊंगा और माफ़ी की भीख मांगूंगा तो वो मुझ पर तरस खाएगी, लेकिन मैंने उसे अनजाने में ऐसा झटका दिया था जिससे वो अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर हो जाएगी और फिर मेरे लिए उसे ट्रैक करना बेहद आसान हो जाएगा। ये कहते हुए राजवीर अचानक हंसा और बोला, तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? मैंने नैना माथुर का चेन चुरा लिया था। आखिरकार मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी, उसका ईगो सेटिस्फाई कर दिया था और साथ ही उसे एक चैलेंज भी दे दिया था कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि राजवीर जिंदल उस पर मर मिटे। और मैं जानता था अब वो खुद बखुद मुझसे मिलने की कोशिश करेगी और मेरे करीब आएगी। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार था उसके खुद मेरे पास आने का। फिर उसी दिन मैंने एक बार फिर से चैरिटी करने का फैसला किया। 3 दिन इंतजार करने के बाद मैं दोबारा उसी आश्रम में पहुंचा। वहां नैना माथुर पहले से ही मौजूद थी और मुझे ये पहले से पता था क्योंकि मैंने अपने एक आदमी की उसकी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए लगाया हुआ था। जैसे ही मुझे पता चला कि वो वहां है, मैं बिना देर किए तुरंत वहां पहुंच गया। वहां जाकर मैंने अपने हाथों से उन गरीब बच्चों के लिए खाना पकाया और सबको खिलाना शुरू कर दिया। मुझे पता था नैना ज़रूर वहां आने वाली है, इसलिए मैं उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। और फिर अचानक वहां ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, छमछम की आवाज़ के साथ। एक बार फिर नैना जैसे ही वहां आई, सब बारिश में भीग चुके थे। उसके गीले बाल, उसके शरीर की बनावट, क्या बताऊं अरमान, उस वक्त मेरे लिए अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जो प्लान मैंने बनाया था उसके लिए मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना ही था। जैसे ही नैना के भाइयों ने मुझे बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा, मैंने भी उसे देखा, लेकिन फिर जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मैंने अपने कपड़ों पर थोड़ा सा खाना भी गिरा लिया ताकि मैं खुद को साधारण दिखा सकूँ और उसे अपनी तरफ अलग तरीके से आकर्षित कर सकूँ। खाना खिलाने के बाद भीगने के इरादे से मैं बारिश में ही चला गया और वहां जाकर मैंने अपनी शर्ट उतार दी। मेरा लोहे जैसा शरीर देखकर आश्रम में काम करने वाले लोग हैरान रह गए और मुझे अलग नजरों से देखने लगे। वहीं नैना माथुर भी उन लोगों में से एक थी, लेकिन उसने सिर्फ एक बार मुझे देखा, दूसरी बार देखना उसने जरूरी नहीं समझा। मैं समझ चुका था कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पर उसे अपने करीब लाने में वक्त लगेगा। ये सोचकर मैंने तुरंत अपनी शर्ट पहन ली और बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगा। लेकिन उस वक्त नैना की नजरें पूरी तरह मुझ पर ही टिकी हुई थी। शायद वो सोच रही थी कि मैं उसके पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन मैं समझ चुका था मुझे उसे अपने पीछे लाना है, मुझे खुद उसके पीछे नहीं जाना है। इसलिए मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था उसके खुद मेरे पास आने का। थोड़ी ही देर बाद नैना अपने हाथों में गर्मा गर्म कॉफी का कप लेकर मेरी ओर आई। वो मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे देखते ही तुरंत साइड से निकलकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन नैना एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जबरदस्ती कॉफी का कप मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, आपको सर्दी लग जाएगी, इसे पी लीजिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। उस पल उसके हाथों का स्पर्श जैसे ही मेरे हाथों से हुआ, मुझे ऐसा लगा मानो मेरा पूरा शरीर आग की भट्टी की तरह जल उठा हो। उसके सिर्फ एक स्पर्श ने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया था। मैं उसे पाने के लिए पागल हो चुका था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो एक पल में मेरा नाम मिटा दिया जाएगा। वैसे भी उसके साथ लाखों लोगों का प्यार था, उनका विश्वास था, और मैं ये समझ चुका था कि अगर मुझे उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाना है तो सबसे पहले मुझे उसकी जिंदगी के हर रास्ते को बंद करना होगा। लाखों लोगों का जो प्यार उसे मिला हुआ है उसे खत्म करना होगा। जब तक मैं उसकी जिंदगी से हर रिश्ते हर सहारे को खत्म नहीं कर दूंगा, वो मेरी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे सबको खत्म करना होगा। ये मैं उसी दिन समझ चुका था। फिलहाल उसने जो कॉफी मुझे दी थी मैंने उसे बड़े ही चाव से पिया और उस कप को आज तक संभाल कर रखा है, वही कप जिसे पहली बार नैना ने छूकर मुझे दिया था। राजवीर की ये पागलपन भरी लव स्टोरी सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वहीं ध्रुव और आहान, जो एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी आहान गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर हम यहाँ बैठकर इस पागल आदमी की लव स्टोरी क्यों सुन रहे हैं, जबकि ये हमारी जान लेने पर उतारू है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का, और हो सकता है कि भाभी ठीक ना हो, हमें उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर ध्रुव ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, भाभी ठीक नहीं होंगी।
शायद तुम समझ नहीं रहे हो, वहां भाभी पर हमला किसने किया है? भाभी पर हमला अरमान से धनिया ने किया है, और माँ सिंघानिया की पकड़ इतनी भी ढीली नहीं है कि उनकी पत्नी की पकड़ से कोई भी बच जाए। इसका मतलब साफ है, भाभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। और तुम अपनी बातों से किसी को भी झूठी तसल्ली मत दो, सबको सच का सामना करने दो। ये कहते हुए ध्रुव का गला रुंध गया था, वो पूरी तरह से भावुक होकर रोने लगा था। ध्रुव को रोता देखकर आहान भी खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा था। वो रोते रोते बार बार बोला, मैं अब भैया से कभी भी बात नहीं करूंगा, भले ही उन्होंने इस पागल डॉक्टर के वश में आकर भाभी के साथ गलत किया हो, लेकिन फिर भी इसमें सारी गलती अरमान भैया की ही है। उन्हें अपने इस गुस्से और दर्द के बावजूद अपने आप पर काबू रखना चाहिए था, उन्हें भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहान का दिल बच्चों के जैसा था जो फूट फूट कर रो रहा था। आहान और ध्रुव की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए जो सभी लोग अपने आंसू रोक चुके थे वे फिर से रो पड़े। सबसे बड़ा दर्द इस वक्त दादाजी का था। दादाजी की तो हालत भी ऐसी हो गई थी कि वे पूरी तरह से बिखर चुके थे। आखिर आस्था के उनकी जिंदगी में आने के बाद ही अरमान की जिंदगी में रोशनी की किरण फैली थी, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। सभी की आंखों में बार बार आस्था का चेहरा आ रहा था, वो मासूम अंश का। अब कौन बनेगा उसका सहारा, उसका ख्याल कौन रखेगा? वहीं वहां इन सभी को इस तरह बुरी तरह से रोता देखकर रौनक साथ ही साथ वंशिका भी फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ ही पलों में वहां सबके रोने की चीखें तेज आवाज में गूंजने लगी थीं, और अब ये सब देखकर राजवीर का गुस्सा भी आसमान छूने लगा था। तभी अचानक राजवीर ने लाल आंखों से आहान की ओर देखा और गरजते हुए बोला, आहान सिंघानिया, मैं अपनी जिंदगी के वो राज यहां खोल रहा हूं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। खबरदार, अगर तुम में से किसी की भी आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। अरे जो लड़की मर चुकी है उसके लिए इतना क्यों रोना? तुम लोगों ने रो रोकर मेरे कानों में दर्द कर दिया है। एक तो मैं यहां अपने पुराने दिनों को याद करके सारी बातें बता रहा हूं, और तुम लोगों की मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए, तुम लोगों को फ्री में राजवीर द ग्रेट जिंदल की लव स्टोरी सुनने को मिल रही है। उस वक्त राजवीर का चेहरा इतना सनकी और खतरनाक लग रहा था कि कोई भी उसकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर उसने एक बार फिर अरमान की ओर देखा और बोला, लेकिन मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी तक इन सब की जान क्यों नहीं ले रहा हूं, तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हारी जान जाए और ये सब आस्था की मोहब्बत में तुम्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखें। उसके बाद ही मैं इन सब की जान लूंगा, क्योंकि जब तक ये सब मरेंगे नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे चेले इन सब की जान जाना तो पूरी तरह से पक्का है और उनकी जान जान से कोई नहीं रोक सकता। आखिर क्या चल रहा है राजवीर के दिमाग में और क्या है अरमान की चाल, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। सुनते रहेंगे तेरे इश्क में पॉकेट FM पर।